अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय सूरज भाई जी का, वो कृपया मंच पर अपने आसन ग्रहण करें। हम निवेदन करते हैं बहनों से कि भाई जी का स्वागत करें। आदरणीय सूरज भाई जी 1964 में ये ज्ञान में आए, ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए, फिर 1968 में ये ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। अभी हम सबको जो इतना अच्छा खाना मिल रहा है, वो इस खाने का जो भी सूत्रधार है, इसके पीछे हमारे आदरणीय सूरज भाई जी है। ज्ञान सरोवर में वो किचन डिपार्टमेंट को की देखरेख करते हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, मन की बातें, जो हमारे प्रश्न होते हैं उसके आंसर्स देते हैं कई सारे हमारे ब्रह्म कुमारीज पब्लिकेशंस मैगजीन्स में। भाई साहब हमको ब्रह्म कुमारीज की हिस्ट्री संक्षिप्त में पूरे डिटेल के रूप में हमें ले जाएंगे उस जर्नी में, जो हमने गीत में सुना कैसे संस्था की स्थापना हुई और यहाँ तक हम कैसे सफर करके आए, इस जर्नी में हमें ले जाएंगे आदरणीय सूरज भाई जी।
ओम शांति। भोजन का नाम सुन के बड़े खुश हुए आप सभी। इसका अर्थ है कि आप भोजन खा के बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे महान यज्ञ का इतिहास रखने जा रहे हैं जिसके द्वारा अब युग बदलेगा। एक ऐसे महान पुरुष की कहानी आप सुनेंगे जिसमें इतिहास को बदलने की क्षमता थी। कैसे उसने किया ये सब कार्य, जहां आप आए हैं इसका संपूर्ण परिचय क्या है, आप क्यों आए हैं, कौन आपको लाए हैं। मोटे रूप से तो आप जानते हैं, आपको निमंत्रण दिया गया, परंतु बात इतनी ही नहीं है। एक मंत्री महोदय भी नीचे, हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें आए थे, उनकी मिसेज भी थी, दोनों कह रहे थे, जो भाई उनको लाया था उसको कह रहे थे, ये अगर हमारे पीछे न पड़ता तो हम बहुत बड़ी चीज मिस कर देते। आप में से भी कईयों की यही कहानी होगी, कोई आपके पीछे पड़ा होगा 5-7 साल से, तब आप यहां पर पहुंचे हैं। और अब आप अवश्य सोच रहे होंगे कि ये ऐसा स्थान है जहां से हम चार्ज हो जाते हैं, मन बुद्धि को चार्ज करने का सुंदर स्थान। हमारे भारत में एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है, आप सब उससे परिचित हैं, मैं केवल आपको उसकी याद दिलाऊंगा, और वही जुड़ी है हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास से, और वो है, आप सबने गीता के ये महावाक्य सुने हैं, तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है कि जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होता हूं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कहानी, इसका इतिहास भगवान के अवतरण का इतिहास है, ये किसी मनुष्य का इतिहास नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं ये स्वयं भगवान का इतिहास है। वो कैसे इस धरा पर अपना दिव्य कार्य करता है, उसकी झलकियां हमने अपनी आंखों से देखी हैं, उसके महावाक्यों को अपने कानों से सुना है, वही अनुभव की बातें आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं इस टॉपिक को इस ढंग से लूंगा कि जिससे आप लाभान्वित भी हों, केवल हिस्ट्री सुनेंगे नहीं। कहानी प्रारंभ होती है 1935 से, 1935, और ये कहानी है एक ऐसे पुरुष की जिसका नाम था दादा लेखराज, जो सिंध हैदराबाद में जन्मे थे और जिनका अपना अच्छा ज्वेलरी का बिजनेस था मुंबई और कोलकाता में। राजाओं महाराजाओं तक उनकी पहुंच थी, तत्कालीन अनेक राजाओं महाराजाओं से उनका बिजनेस चलता था। स्वभाव से वो बहुत सौम्य, बहुत लिबरल, बहुत रॉयल, बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित, कृपलानी कुल में जन्मे थे। 35 से जब वो भक्ति करते थे, रोज गीता पढ़ते थे, विष्णु के विशेष रूप से भक्त थे श्री कृष्ण के, सन 35 में उन्हें अपने इष्ट देवों के साक्षात्कार हुए, डिवाइन विजन उन्हें प्राप्त हुई और उन्होंने अपने सम्मुख उन सब देवी देवताओं को देखा जिनमें उनकी श्रद्धा थी, मान्यता थी, और यहां से वो अंतर्मुखी हो गए, इंट्रोवर्ट हुए। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसके पीछे गॉडली प्लानिंग थी जो अब आपकी समझ में आ जाएगी। 35 और 36 में उन्हें अनेक साक्षात्कार होते रहे जिसमें उन्होंने न केवल अपने इस देवों के साक्षात्कार किए बल्कि सृष्टि का महाविनाश भी देखा, और उन्हें आवाज आने लगी अब ये कलियुगी पुरानी सृष्टि एटम बॉम्ब्स के द्वारा समाप्त होगी। ये बात 35-36 की। आप जानते हैं तब तक एटम बॉम्ब्स का प्रचार प्रसार नहीं था, उसका पता तो 45 में लगा जब अमेरिका ने चीन पर पहला, वो जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में पहला छोटा सा एटम बम का विस्फोट किया था, आप सब उसको जानते हैं। बाबा ने बिल्कुल वो विस्फोट होते हुए देखे, आकाश सारा अग्नि से भरा हुआ है, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, सागर उछल रहा है, संसार में त्राही त्राही मच रही है, भूकंप अति जोर शोर से तबाही कर रहे हैं। ये सब बाबा ने कई बार देखा और उन्हें आवाज आती थी कि ये पुरानी सृष्टि का अब अंत समीप है, होने वाली महाभारत बड़ी वार से इसकी समाप्ति होगी, ये महाभारत काल की पुनरावृत्ति का समय है। ये उन्हें आवाज आने लगी, कौन आवाज दे रहा है ये उन्हें पता नहीं था। बनारस में गए, वो गुरु किए हुए थे कई सारे, अपने गुरुओं से पूछा मुझे ये कुछ हो रहा है, लेकिन गुरुओं की लैंग्वेज से वो समझ गए कि गुरु इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। काशी में गए, वहां उनके फ्रेंड का एक बहुत बड़ा मकान था, उसमें वो रहने लगे, वहां भी उनको डिवाइन विजन प्राप्त होने लगी, वंडरफुल साक्षात्कार जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, वंडरफुल इंट्यूशंस उन्हें प्राप्त होने लगे। अब हैदराबाद में वो आ गए जहां उनका नेटिव प्लेस था, अब उन्हें खोज थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गीता रोज पढ़ते थे, अब जो एक सबसे सुंदर घटना है जो उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाने वाली थी, जहां से ये दिव्य कार्य प्रारंभ होता है, वो आप ध्यान से सुन लें। उन्होंने अपने गुरु को अपने घर में बुलाया हुआ था, सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे, अचानक वो सत्संग से उठे, सबसे आगे बैठे थे, गुरु उनके ही मेहमान थे, वो सत्संग से उठे और अपने कमरे में गए। उनकी पुत्र वधू भी वहां थी, उसने देखा कि दादा गुरु को छोड़कर कहीं जा रहे हैं, उनको ये बड़ा आश्चर्य प्रतीत हुआ, ऐसा दादा कभी करते नहीं थे, बहुत सम्मान रखते थे अपने गुरुओं का। वो पीछे पीछे गई, इसमें केवल एक मिनट का अंतर था, आगे बाबा गए, एक मिनट में वो वहां पहुंची। कमरे में उन्होंने जो कुछ देखा वो ये था कि सारा कमरा लाल डिवाइन प्रकाश से भर गया था। बाबा एक टक कहीं जैसे देख रहे हैं, बाबा के नैनों से तेज निकल रहा है, ये इनको दिखाई दे रहा था। ये खड़ी देख रही थी और अचानक इन्होंने सुना बाबा के मुख से आवाज निकलने लगी। वो तीन शब्द थे बहुत सुंदर, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। बहुत इस आवाज में इतना आकर्षण था कि जैसे सारा वातावरण इस आवाज से गूंजने लगा था। दूसरी लाइन लिखी, दूसरी लाइन उच्चारित हुई, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। तीसरा, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। और बहुत जैसे वाइब्रेट हो गया सारा वो कक्ष, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस वहां होने लगे। ये खड़ी की खड़ी रह गई कि ये दादा को क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में, 5 मिनट हो गए होंगे, वो सीन लोप हो गया। बाबा को अपनी चेतना लौटी, मैं कहां हूं। उनको तो यही था कि गुरु का भाषण चल रहा था, मैं सत्संग में बैठा था, मैं कहां हूं। पीछे मुड़ के देखा, वो माताजी खड़ी है, उनका नाम राधा था। उन्होंने भी कहा कि दादाजी आप क्या कर रहे थे यहां, क्या फीलिंग हो रही थी आपको, क्या बोल रहे थे आप अपने मुख से। उन्हें कुछ पता नहीं था मैं क्या बोल रहा था। इन्होंने बताया कि आपके मुख से तो ये आवाज निकल रही थी। वो तत्काल गुरु के पास गए, हाथ जोड़े, चरण छुए और महिमा की गुरु की कि आपकी कृपा से मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी भी हुआ है। लेकिन गुरु के एक्सप्रेशन से, उनके शब्दों से फिर वे समझ गए कि गुरु इस बारे में अनभिज्ञ है। यहां से वो गुरुओं से मुक्त हुए और उन्हें आभास हुआ कि निराकार सर्वशक्तिवान शिव ने उनके तन में प्रवेश किया था। और यहां से एक कहानी प्रारंभ होती है शिव के अवतरण की। अब शिव उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा ज्ञान उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे लोग सुनने आ गए, आने लगे। 400 लोगों का एक सुंदर सत्संग प्रारंभ हो गया जिसमें बड़े युवक बच्चे सभी थे। सभी को एक वंडरफुल चीज थी कि बाबा जिस पर दृष्टि डालते थे, किसी को श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे हैं, किसी को श्री राम के, किसी को हनुमान के, किसी को गणेश के, किसी को दुर्गा के, किसी को संतोषी मां के, साक्षात्कारों की जैसे धूम मच गई। लोग सोचते थे कि ये दादा कराते हैं, पर दादाजी इस बात से अनभिज्ञ थे। वो भी देखते थे कि जिस पर मेरी नजर पड़ती है वो ध्यान मगन हो जाते हैं। धीरे धीरे पता चल गया, उन्हें भी इस बात का पहले पता नहीं था कि ये तो स्वयं निराकार उनके तन में बैठकर उनकी आंखों से आत्माओं को निहारते हैं। सबको परमात्म मिलन की सुखद फीलिंग हो गई। जो भी बाबा के सत्संग में आता था वो संपूर्ण तृप्त हो जाता था। बाबा ने सभी को आदेश दिया, अब तुम सबको पवित्र जीवन बनाना है और पवित्रता की एक सुंदर सरिता इस धरा पर बहनी प्रारंभ हुई। मैं कहानी के बीच में ही आप सबको सुना दूं, इस संसार में पावर ऑफ प्योरिटी इज द बिगेस्ट पावर। उस जैसी शक्ति और कोई नहीं है। आज प्रकृति में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, आप उससे परिचित हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। साइंटिस्ट हमारे सभी लोग जो उससे संबंधित हैं पॉल्यूशन की चर्चा तो करते हैं, परंतु उसके निवारण का, उसके समाधान का ज्ञान किसी के पास नहीं है कि अगर ऊपर परत में ओजोन बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं तो उसको भरा कैसे जाए। छिद्र तो हो गए हैं, ये तो पता चल गया, पर भरे कैसे? प्रकृति को प्योरीफाई कैसे किया जाए? पानी दूषित हो गया है, धरती अन्न नहीं दे रही है। आप सब परिचित हैं इन चीजों से, खाद पानी न जाने क्या क्या डालकर, इंजेक्शन लगाकर तो हमें फल मिल रहे हैं, हमें सब्जियां मिल रही हैं। प्रकृति अपनी शक्ति को संपूर्ण रूप से समाप्त कर चुकी है। इसके पुनरुत्थान में प्योरिटी ही सबसे बड़ा काम करेगी। तो स्वयं भगवान का संदेश मिल गया, आदेश मिल गया, बी प्योर एंड बी राजयोगी। तुम्हें राजयोगी बनना है, अर्थात मेरे से अपना कनेक्शन जोड़कर मुझसे शक्तियां प्राप्त करनी है, ताकि तुम अपनी ओरिजिनल स्थिति परफेक्शन को प्राप्त कर सको। तो भगवान का सबको संदेश मिल गया, ये साइकिल सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग का अब समाप्त होने वाला है। भगवान की डायरेक्ट वाणी हो गई, हमने खुद सुनी, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुम 5000 साल पहले परमधाम से इस धरा पर आए थे। अब ये चक्र पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। अब मैं आ गया हूं तुम्हें वापिस ले जाने के लिए। अब तुम्हें वापिस मुक्ति धाम को चलना है। इससे पहले तुम्हें वैसा ही बनना होगा जैसे तुम इस धरा पर आए थे, परफेक्ट आए थे, परफेक्ट होकर ही जाना होगा। ये मान्यता बदल दी कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। हमें संदेश दे दिया, तुम फुल आए थे, संपूर्ण भाग्य लेकर आए थे, परफेक्ट आए थे। अब तुम इम्परफेक्ट हो गए हो, खाली हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, अब तुम्हें वापिस चलना है। ये मोमेंट शुरू हुआ। 36-37 आया, बाबा ने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति एक माताओं का ट्रस्ट बनाकर उसको समर्पित कर दी और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और बाबा को नाम दिया, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा। कई लोग सोचते हैं दादा को यहां रखा है, ब्रह्मा की जगह बैठा दिया है, ऐसा क्यों किया गया है? ये हमने नहीं किया, परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया और इनको कहा, अब तुम्हारे द्वारा मुझे इस संसार से अज्ञान का अंधकार मिटाना है, मुझे तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे मुख से ज्ञान का प्रकाश फैलाकर हर चित्त को एनलाइटेंड करना है। अब तुम इसके मीडियम हो, इसलिए आज से तुम हुए प्रजापिता ब्रह्मा, मेरे मीडियम। और उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी जीश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की 37 में, बाकायदे संस्था का नाम पड़ गया। उससे पहले इसका नाम था ओम मंडली, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि उच्चारित किया करते थे। यहां से ये कार्य आगे बढ़ा। अब ये डेली का रूटीन हो गया कि मॉर्निंग टाइम में निराकार सत्ता ब्रह्मा के तन में आती थी, आधा घंटा, पौना घंटा महावाक्य सुनाते थे, सभी उसे सुनते थे, सबको डिवाइन एक्सपीरियंस होते थे, डीप साइलेंस, रियल पीस, संपूर्ण प्योरिटी, एनर्जेटिक फीलिंग, ये सब बहुत होती थी 13-14 साल तक। हैदराबाद से कराची आ गए थे एक साल के बाद, कराची में फिर 13 साल रहे और सन 50 में ये संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जहाज के द्वारा कराची से ओखा बंदरगाह, ओखा से माउंट आबू पर स्थानांतरित हुआ। और यहां आकर सभी को ये क्यों यहां पर आए, कई लोगों का प्रश्न उठता है। आप सभी को मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं और अपनी डिवाइन आईज के द्वारा, अपनी इंटेलेक्चुअल आईज के द्वारा आप सबको ये बहुत अच्छी तरह देखना है। सब इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, हम जब देखते हैं कि ऐसी सभा या तो हमारे पास एजुकेशन विंग में होती है जिसमें कई वाइस चांसलर, सब प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स होते हैं, या मेडिकल कॉन्फ्रेंस में होती है जिसमें अनेक डॉक्टर्स एमएस और एमडी होते हैं, या अभी स्पार्क में हुई है जिसमें पीएचडी होल्डर्स और आप सभी बहुत बुद्धिमान भाई बहने यहां आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी अपनी बुद्धि के नेत्र से इस कार्य को देखेंगे। कि यहां कोई भी कार्य किसी मनुष्य की गाइडेंस के द्वारा नहीं चलता, सुप्रीम गाइडेंस, निराकार की गाइडेंस, ज्ञान के सागर की गाइडेंस। यहां जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपने आज सवेरे का सेशन किया होगा पहला 7 बजे के आसपास, कल भी आप करेंगे और अवश्य करें आप उसे, उसमें आपको स्पष्ट ज्ञान मिलेगा। आज आत्मा का ज्ञान आपको दिया गया, मैं थोड़े में बता दूं, यही आत्मज्ञान हमारी इंडियन फिलोसॉफी में, दर्शनों में, उपनिषदों में और वेदों में लंबी चौड़ी चर्चाओं में आ गया है। इसके बाद भी हमारे ऋषियों को ये स्पष्ट आभास नहीं हो पाया कि आखिर तुम हो कौन, आए कहां से हो। मेरी बहुत चर्चाएं होती रही हैं विद्वानों से, महामंडलेश्वरों से, मैं उनसे एक प्रश्न पूछा करता था कि आखिर हम आत्माएं इस धरा पर आए कहां से हैं, क्या कहती है हमारी इंडियन फिलोसॉफी, नो आंसर। आपने आज देखा होगा, जिन्होंने भी सवेरे की क्लास अटेंड की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो क्लास मिस ना करें। कल कई लोग थके हुए भी आए होंगे, इसलिए आज सवेरे सो गए थे, मैं देख रहा था कई 8 बजे उठकर सीधे नाश्ते पर आ रहे हैं। तो आप सभी पहले आत्मा की खुराक ले लें, बाद में शरीर को भोजन दिया करें। तो आपने देखा होगा आत्मा का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट, सिंपल लैंग्वेज में, कुछ भी क्रिटिकल नहीं, ये है या ये नहीं है, ये है, ये सब नहीं, आप ये हो। आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा इतनी प्योर थी, क्या हुआ, अब क्या होना है। तो ये संपूर्ण ज्ञान किसी पुस्तक से लिया गया नहीं है, स्कॉलर्स के द्वारा रिसर्च किया गया नहीं है, ये डायरेक्ट परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर सुनाया है। हमने खुद सुना है, अपनी आंखों से देखा था। मैं 68 में ही पहली बार यहां आ गया था और मेरी सबसे डिवाइन फीलिंग थी ये, हालांकि मैं छोटा था और पढ़ता था, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर, फिलोसॉफी की ओर बहुत अट्रैक्शन था और बचपन से ही मैंने इंडियन फिलोसॉफी की स्टडी प्रारंभ कर दी थी। योग दर्शन पढ़ा था, उपनिषद पढ़े थे, गीता पढ़ी थी और कई चीजें पढ़ी थी। तो मैं देखता था बाबा को, बाबा जब सारे दिन हैं उधर पांडव भवन, आप देखेंगे परसों, वो हमारा हेड ऑफिस, बाबा जब सारे दिन हैं वो वहां आंगन में हैं, अपने कमरे में हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, उनका चेहरा तब, और जब सवेरे के समय रोज 6:15 बजे सर्वशक्तिमान उनके तन में प्रवेश करते थे, तब उनका चेहरा ग्लो, डिवाइन वाइब्रेशंस, आंखों से निकलता हुआ तेज हम साफ देख सकते थे। मुझे याद रहती है अपनी एक घटना, सबकी वो घटना थी कि हम क्लास में बैठे थे सवेरे आके, रोज 5:30 बजे आ जाते थे, तो 6:15 तक कई लोगों को सुस्ती हो गई, कई लोग थोड़े थक सी गए, सवेरे बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहे, किसी का हो रहा किसी का नहीं, जैसे सबके साथ होता है। बाबा 6:15 बजे दरवाजे में प्रविष्ट हुए और जैसे सारे हॉल में एक डिवाइन करंट फैल गई हो, सब चेतन, सबकी वो सुस्ती, वो संकल्प कहां चले गए, संपूर्ण कंसंट्रेशन। तब आभास होता था कि वो नहीं बोल रहे हैं, उनके माध्यम से कोई और बोल रहा है, और वो पावर, वो कौन बोल रहा है, वो उनके जो मुख से निकले हुए शब्द थे उनमें जो पावर होती थी, उनमें जो वाइब्रेशंस होते थे, उससे आभास होता था कि ऐसी वाणी सिवाय ज्ञान के सागर के कोई और नहीं उच्चारित कर सकता। मैं एक बात और कहूं जो मुझे बहुत आकर्षित करती थी उन दिनों, तो बाबा अपने बच्चों का यानी सभी आत्माओं का इतना सम्मान करते थे कि कहा करते थे, ये सब मेरे बच्चे महान आत्माएं हैं, मैं इनको पीठ नहीं दूंगा। तो जब क्लास से महावाक्य सुनाकर उठकर बाहर जाते थे ना, तो पीछे होके नहीं जाते थे, पीठ देकर पीछे चलते थे, बहुत सम्मान करते थे मातृशक्ति का। उन्हें बिल्कुल स्पष्ट आभास था कि माताएं ही जगत का कल्याण करने में सक्षम हैं, इसलिए उन्होंने नारी को अबला नहीं, क्या बना दिया होगा, शिव शक्ति। उन्होंने कहा ये अबला नाम जिसने नारी पर रखा है वो खुद बलहीन होगा, नारी अबला नहीं। जिन शिव शक्तियों की मंदिरों में पूजा हो रही है वो नारियां ही हैं। शिव से जिन्होंने शक्तियां प्राप्त की वही नारी शिव शक्ति बन जाती है, और मात्र शक्ति क्योंकि घरों में बच्चों की पालना करती है, मात्र शक्ति में ही वो ज्ञान हो सकता है, वो प्रेम हो सकता है, निष्काम प्रेम, निर्मल प्रेम, वो तेजस्विता हो सकती है कि वो हर मनुष्य का कल्याण कर दे। तो इसलिए बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य संचालन का कार्य बहनों को दिया। लोग पूछते हैं कि क्या भाई योग्य नहीं है जो माताओं को दिया, इसमें योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं है। मात्र शक्ति के द्वारा बाबा को जग का कल्याण करना था, ये परम सत्ता की भी प्रेरणा थी और ये ब्रह्मा बाबा की भी पूरी फीलिंग्स थी कि मात्र शक्ति ही बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। तो उन्होंने बहुत कार्य इस तरह से माताओं के द्वारा किया। मैं आपको बता दूं, पहले ही बता देता हूं, इस समय हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगभग 16,000 बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। 16,000, ये बहुत सुंदर संख्या है। मैं जब समर्पित हुआ 68 में तो ये संख्या बहुत थोड़ी सी थी, 300-400। 16,000 इस समय लगभग बहने हैं और ऐसे ही 2,500-3,000 भाई हैं। इन सभी के लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य पहली कंडीशन होती है, उसके बिना कोई भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य नहीं कर सकते। खान पान की संपूर्ण शुद्धि और राजयोग की बहुत सुंदर साधना। तो आप समझ सकते हैं जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 16,000 पवित्र शिव शक्तियां काम कर रही हों, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना स्ट्रांग होगा। एक शहर में एक इष्ट देवी होती है, सारे शहर के लोग उसकी पूजा पाठ करने जाते हैं। लोग समझते हैं इष्ट देवी प्रसन्न है तो शहर पर आपदा विपदा नहीं आएगी, वही देवियां काम कर रही हैं। आगे चले हम, 14 वर्ष की तपस्या के बाद बाबा ने सभी को राजयोग की गहन तपस्या कराई। 14 वर्ष 36 से 50 तक पार्टीशन हो गया, पूरा ये सब वहां से आबू में आ गया सन 50 दिवाली पर। और तब से बाबा ने सभी को आदेश दिया कि भारत के विभिन्न शहरों में जाओ और ये ईश्वरीय संदेश सभी मनुष्य आत्माओं को दो, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं उनका प्रभु मिलन कराओ। और हमारी बहनें और जो तब भाई थे वो सब भारत के भिन्न भिन्न शहरों में गए, ये कार्य आगे बढ़ा, सेवा केंद्र खुले। सन 1971 में हमारा पहला डेलीगेशन विदेशों में गया और विदेशों की सेवा प्रारंभ हुई, और इस समय 130 देशों में लगभग भारत के अलावा हमारी ये शाखाएं हैं जहां ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है। आप ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे, अवश्य ही मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग, बुद्धिस्ट लोग और हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के लोग यहां पर आकर राजयोग सीखते हैं, अपने जीवन को प्योरिफाई करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं, कोई निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं, किसी के पास संकल्पों की शक्ति के सुंदर अनुभव होते हैं। विदेशों के लोगों ने, क्रिश्चियंस के लोगों ने, आप जानते हैं जिनका खान पान कैसा होता है, जहां की डिक्शनरी से ब्रह्मचर्य शब्द को सदा के लिए निकाल दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास तो लोग आते हैं हर साल 10,000 विदेशी, हमें उनकी संपूर्ण कल्चर का पता चलता है। ऐसे लोग संपूर्ण पवित्रता को अपना रहे हैं, खान पान को बिल्कुल सात्विक कर लिया है, बीड़ी सिगरेट शराब का कतई सेवन नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे भारत में बहुत सारे लोग विदेशों से हमारे यहाँ माउंट आबू में आते हैं। हेड ऑफिस माउंट आबू रहा 1969 में, क्योंकि बाबा ने बहुत गहन तपस्या की थी। बाबा एक चलते फिरते योगी थे, मैं उनके लिए कह सकता हूं, जैसा मैंने पढ़ा था पुस्तकों में ग्रंथों में, वो एक ऐसे महान पुरुष थे जो चलते फिरते समाधिस्थ रहते थे, निरंतर योग युक्त रहते थे, जिन्होंने महान त्याग किया था और वैराग्य को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया था। 18 जनवरी में उन्होंने परफेक्ट स्थिति को प्राप्त किया और अपनी इच्छा अनुसार बिना कष्ट के बैठे बैठे देह का त्याग किया और संस्था के संचालन का कार्य सौंपा गया दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को। दादी प्रकाशमणि ने अभी देह त्याग किया है 2007 में, और दीदी मनमोहिनी ने 1983 में देह का त्याग किया था। इस समय दादी जानकी जी संस्था की चीफ हैं दादी प्रकाशमणि के बाद। दादी प्रकाशमणि ने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जहां तहां बड़ी बड़ी सम्मेलनों का आयोजन किया गया, भारत के बनारस के ऋषिकेश हरिद्वार और साउथ के अनेक शंकराचार्य महामंडलेश्वर और विदुषकगण हमारे यहां पर आए हैं और इस सत्य ज्ञान का अवलोकन किया। अब भी दो अच्छे शंकराचार्य, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, जो इस ज्ञान और योग की बहुत अच्छी साधना करते हैं स्वयं भी। अब मैं आपको कुछ और चीजें कहना चाहता हूं, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे पास 10 मिनट हैं। ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, पहले पांडव भवन था, आप देखेंगे उसे, जहां बाबा की झोपड़ी और बाबा का रूम आप देखेंगे, जहां बाबा निवास करते थे, जहां के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। छोटी सी बात सुना दूं, आप देखेंगे वहां जाकर, वहीं बाबा का अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी यादगार में टावर ऑफ पीस बना है, बाबा के रूम झोपड़ी और टावर ऑफ पीस तक एक मार्ग जैसा है, 15 फुट का आप समझ लें चौड़ा और एक लंबा मार्ग है। हमारे पास रशिया का एक व्यक्ति बहुत साल पहले आया था, जब हमारी रूस में सेवा शुरू हुई, उसके पास एक अपना इंस्ट्रूमेंट था, उसमें स्केल था, वो वाइब्रेशंस को रीड कर सकता था, तो आया आबू रोड पहुंचा, उसका कांटा तेजी से आगे चलने लगा, ऊपर आया हमारे पांडव भवन में आ गया, उसके कांटे ने फुल पर जोर से टक्कर मारी और टूट गया। दूसरे भी थे उसके पास, हमें तो इन चीजों का पता नहीं था, हम तो वहां रहते थे, जहां मनुष्य रहता है वहां क्या है ये उस मनुष्य को कम पता होता है। उसने बताया कि ये जो बेल्ट है आपकी 15 फुट चौड़ी, बाबा की झोपड़ी से और टावर ऑफ पीस तक, ये ऐसा स्थान है कि संसार में सबसे अधिक पावरफुल प्योर वाइब्रेशंस यहां हैं, ऐसे संसार में कहीं नहीं। मेरी जो ये मशीन थी, जो ये इंस्ट्रूमेंट था, इसकी जो अंतिम सीमा थी ना नापने की, उससे भी बहुत ज्यादा यहां पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, आप उस स्थान को देखेंगे। 95 तक इस ज्ञान सरोवर का निर्माण हो गया, ये जंगल था, पहाड़ी थी, यहां कोई मनुष्य आता भी नहीं था, चीते और भालुओं के अलावा यहां कोई नहीं रहता था। हम लोगों ने जब ये जगह ली तो मुश्किल हो गई, यहां बने कैसे, एक कमरा भी नहीं बन सकता, ऐसी जगह थी। इंजीनियर साहब, उन्होंने रोड्स बनाई और रूम्स बने और ये 2 साल में बन के तैयार हुआ। इसके निर्माण के साथ ही हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने विंग्स की स्थापना की, वुमेन विंग, रूरल विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, ये 18 विंग्स हो गई, जिसमें एक स्पार्क भी है, जिसके तहत आप यहां पधारे हैं, जिसमें रिसर्च का कार्य प्रारंभ किया गया 1996 से, और बहुत अच्छे अनुभव हम सबको उसके हुए। गांव गांव की सेवा हो रही है विंग्स के द्वारा, मैं आपको बता दूं थोड़े में, रूरल विंग के द्वारा गांव में जो खेती करते हैं किसान लोग, योग के वाइब्रेशन से कैसे फसल बहुत अच्छी ज्यादा एनर्जेटिक हो सकती है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने भी शुरू कराए थे राइस की खेती पर, एक जामुन के पेड़ पर कराया था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, वंडरफुल वो रिसर्च थी, क्योंकि स्पार्क से मैं भी जुड़ा और मुझे पहला ही टॉपिक हमारे रमेश भाई जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने दिया, पावर ऑफ थॉट पर तुम्हें रिसर्च करनी करानी है। और मैं आपको सच बताऊं, वंडरफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस बियॉन्ड इमेजिनेशन हमें प्राप्त हुए। हमें लगा कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है, जिसके द्वारा ऐसे ऐसे रोग ठीक हुए जहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। अभी के मेरे अनुभव हैं 2-4 मास के, बहुत सुंदर जो लोगों के साथ हुए, वंडरफुल घटनाएं जहां लोग परेशान थे अपनी समस्याओं से, वहां 3-3 दिन में, 5-5 दिन में, 7-7 दिन में वो समस्याएं समाप्त हुई। तो ये विंग्स का कार्य बहुत सुंदर चल रहा है, सेवाएं चल रही हैं गांव-गांव में, युवकों के द्वारा बहुत अच्छी सेवा होती है। जो और युवक हैं व्यसनों में आ जाते हैं, बुरे संग में आ जाते हैं, उनको उनसे मुक्त करने की बहुत अच्छी टीचिंग्स दी जाती है। कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं बहुत ज्यादा, हर विंग की कॉन्फ्रेंस हर साल, यानी 18 कॉन्फ्रेंसेज हम हर साल यहाँ करते हैं। परमात्मा अवतरण का सुख लेते हैं बहुत ज्यादा। आप सबको भी मैं कहूंगा, अगर आप अपने चित्त को प्रकाशित करना चाहते हैं, एनलाइटेंड करना चाहते हैं, आप अपनी सत्य की खोज को समाप्त करना चाहते हैं, आप प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्म मिलन आप सबका भी अधिकार है, उस अधिकार को पाना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। हमारी ये बहने भाई आप सबको ज्ञान देंगे, वो ज्ञान जो डायरेक्ट परमात्मा ने दिया है। तो 75 साल की इस तरह की ये लंबी यात्रा हम सब ने तय की है। आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए नए सिद्धांत समाज के सामने जब हम रखते हैं उसका अपोजिशन भी होता है, भिन्न भिन्न तरह की कठिनाइयों से भी मनुष्य को गुजरना पड़ता है। मैंने वो सब देखे हैं अपनी आंखों से। लेकिन जहां स्पिरिचुअल पावर है, जहां सत्यता की शक्ति है, वहां और सब चीजें फेल हो जाती हैं, विरोध भी समाप्त हो जाता है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है, आप सभी को ये पता हो। 9000 से ज्यादा शाखाएं इस समय यहीं से संचालित होती हैं। हमारी इन संपूर्ण शाखाओं को जोन्स में बांट दिया गया है, बहुत सारे जोन्स, फिर उनके सब जोन, सब जोन्स के अंदर सेंटर्स, सेंटर्स के अंदर उपसेवा केंद्र, और उसके अंदर बहुत सारी गीता पाठशालाएं जो हम लोग गांव-गांव में खोलते हैं, वो सब मिलकर 9000 से भी ज्यादा हैं। हम लोगों का लक्ष्य ये नहीं होता, बाबा ने हमें ये लक्ष्य नहीं दिया तुम फॉलोअर्स बना लो, तुम करोड़ों की संख्या में हो जाओ। बाबा चाहता है, देखिए मैंने पहले से ही सुना था, मैं बाबा की एक छोटी सी बात सुना दूं आपको। कोई घटना हुई थी हमारे यहां, किसी ने बहुत सब विरोध किया, बाबा को किसी ने कहा, किसी बड़े व्यक्ति ने, कि बाबा ये प्योरिटी की बात अगर छोड़ दो आप तो आपके पीछे करोड़ों लोग आ जाएंगे। ये हम भी जानते हैं। बाबा ने क्या उत्तर दिया था, मैंने जब ये बात सुनी थी मुझे बहुत आनंद हुआ था। बाबा ने कहा, मुझे मैं करने वाली बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शेर और शेरनी जो चैलेंज करें। तो यहां से शिव बाबा सुप्रीम और ब्रह्मा बाबा के द्वारा लीडर्स का निर्माण किया जा रहा, फॉलोअर्स का नहीं, जो संचालन कर सकें, जो दे सकें दूसरों को, लेने वाले नहीं। मैं भी आप सबको कहूंगा, लेने वाले नहीं, देने वाले बनना है। शांति के भिखारी नहीं, शांति के दाता बनना है। सुख मांगने वाले नहीं, सुख देने वाले बनना है। ये सुंदर कार्य परमात्म गाइडेंस में यहाँ के द्वारा चल रहा है। मैंने आपको कहा वर्तमान में इस संस्था की चीफ दादी जानकी जी हैं, एडिशनल चीफ दादी हृदय मोहिनी हैं, ज्वाइंट चीफ रतन मोहिनी दादी हैं। आप सबसे एक दो दादियां मिल चुकी हैं। दादी जानकी अभी विदेश जा रही थी, शायद ना आई हो यहाँ, आज ही उन्हें जाना था अहमदाबाद कुछ चेकअप के लिए। शी इज 96 ईयर्स ओल्ड। मैं उन्हें कहा करता हूँ, हम बहुत क्लोज रहे हैं पहले से, मैं उन्हें कहा करता हूँ दादी जी आप तो 96 ईयर्स के यंग मैन हैं। क्यों यंग मैन हैं? आप आश्चर्य करेंगे, ब्रेन परफेक्ट। जब वो लेक्चर देती हैं तो मुझे लिखने के टॉपिक्स मिलते हैं उनके लेक्चर से, बहुत सुंदर लेक्चर, धारा प्रवाह लेक्चर। जैसे ब्रेन में कोई कमी नहीं आई है, कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है, मेमोरी पावर परफेक्टली काम कर रही है। स्नेह त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। कैलिफोर्निया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कभी उनकी ब्रेन का चेकअप किया था और उनको ये टाइटल दिया था, यू आर मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल स्थिर बुद्धि। मैं उनको 45 साल से देखता आया हूं, बहुत सरल। मैं कहा करता हूं वो सबसे बड़ी त्यागी, सबसे बड़ी योगी, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी वो अपने मुख से कहा करती हैं, मेरा कोई अकाउंट नहीं बैंक में, मेरे नाम से कुछ नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता मेरे पास साड़ियां कितनी हैं। बिल्कुल संपूर्ण त्याग, समर्पणता से भरा हुआ जीवन। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य लीडर्स यदि स्पिरिचुअल पावर से भरपूर ना हो, यदि उनमें त्याग और तपस्या का बल ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को बल नहीं दे सकते। फिर तो लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, फिर तो सबको सीट की, मैं बड़ा बनूं, मैं प्रधान बनूं, मैं चेयरपर्सन बनूं, इसकी भागदौड़ हो जाएगी और हमारी डिविनिटी नष्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको शुरू में कहा था, आप यहां क्यों आए हो, किसने बुलाया है, अब इसका उत्तर दे देता हूं आपको। उन भाई बहनों ने तो निमंत्रण दिया, मैं हंसी में कह रहा था जो आपके पीछे लग गए थे, चलो चलो चलो, कई साल से लगे हुए थे। पर सत्यता ये है कि आप सभी देव कुल की महान आत्माएं हो। और अब जो ये युग बदलेगा, कलयुग बदल कर सत्ययुग में जाएगा, संसार का विनाश संपूर्ण कभी नहीं हुआ करता। लोग डरे हुए हैं कि 21 दिसंबर 2012 को पता नहीं क्या हो जाएगा, कैलेंडर रहेगा या नहीं। कैलेंडर भी रहेगा, हम और आप भी रहेंगे, डोंट वरी। सत्ययुग आएगा, साइकिल बदलेगा, पाप और पापियों का विनाश होगा, देवकुल की आत्माएं सत्ययुग में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये परमात्मा का दिव्य कार्य चल रहा है युग परिवर्तन का, क्योंकि युग बदलना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है, वो ये सोच भी नहीं सकता। वो अपने को तो बदल ले, युग बदलने की बात तो बहुत बड़ी है। तो आप सभी देवकुल की महान आत्माएं हो, इसका डिटेल आप यहां जान लेंगे। और परमात्म प्रेरणा से आप यहां पहुंचे हो, वो अपनी संतानों को बुला रहा है, आत्माओं का आह्वान कर रहा है, बच्चे आज तक तुमने मुझे बुलाया, हे प्रभु आओ, अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, हे आत्माओं आओ, मैं आ गया हूं। आप प्रभु मिलन के बहुत समीप हैं। थोड़ा सा ज्ञान योग से अपने को प्रकाशित करेंगे तो प्रभु मिलन का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। रिसर्च माइंड लिए हुए हैं आप सभी लोग, और मैं ये कहता हूं, मैं ये जानता हूं, राजयोग की विद्या इस संसार में सबसे सूक्ष्म विद्या है। मैं बहुत कुछ पढ़ा है और मैंने पाया कि राजयोग की विद्या में संसार की सभी विद्याएं समा जाती हैं। इस पर भी रिसर्च कर लेना जरा, तो आपकी बुद्धि बहुत डिवाइन और रिफाइन हो जाएगी। बस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास आपको स्पष्ट हो ही गया, 75 साल की यात्रा पूरी हुई, कुछ सालों की हमारी यात्रा और है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, फिर ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम सभी 3 मिनट, बहनों को आना तो नहीं, बहुत पावरफुल फीलिंग में बैठेंगे और इस फीलिंग में सिंपल ऊपर से ऑलमाइटी के वाइब्रेशंस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। जैसे बाहर बरसात हो रही है, यहाँ अंदर परमात्म वाइब्रेशंस की बरसात हो रही, फील करेंगे गॉडली वाइब्रेशंस आर कमिंग डाउन टू मी। बिल्कुल गुड फीलिंग में बैठेंगे, सभी एंजॉय करेंगे।
जी